राम। यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 12 नवंबर 1994 को प्रातः 8:30 गुरु कृपा सत्संग भवन मथुरा में हुआ।
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण 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 नारायण
राम राम राम। सच्चिदानंद महान परमात्मा को और पूज्य जनों को नमस्कार करके आपके समक्ष कुछ बातें कहने के लिए उद्यत हुआ हूँ। मेरी बातों में जो अच्छी हो वो शास्त्रों की, संतों की, महात्माओं की, वेदों की, पुराणों की समझनी चाहिए, और क्योंकि वो मेरी व्यक्ति की बातों को ध्यान ना देकर सिद्धांत की तरफ ध्यान सज्जन देते हैं। आप ऐसा ही करेंगे ऐसी आशा है। भाई बहनों के भीतर एक द्रव्य का बड़ा भारी महत्व चला हुआ है कि द्रव्य बड़ी चीज है, धन बड़ी चीज है, रुपये पैसे बड़ी भारी चीज है। इनसे भी रुपयों से धन से ही बढ़कर एक आपके पास चीज है, उस तरफ ध्यान नहीं देते आप। तो मैं आज कहूँ इस पर आप ध्यान दें। बहुत बड़ी पूंजी आपके पास है, बढ़िया पूंजी आपके पास है, उस पूंजी की तरफ ध्यान दें। आज से ही अगर आप सावचेत होकर और उस पूंजी का ख्याल करें तो वर्तमान में बहुत बड़ी उन्नति हो सकती है। जिस क्षेत्र में जाओ उसी क्षेत्र में, और हमारा तो यहाँ पारमार्थिक उन्नति के लिए ही कहना है। वो पूंजी क्या है? अपने जीवन के दिन, उम्र, जो बची हुई उम्र है, ये बहुत महत्व की चीज है। उस उम्र का सदुपयोग करके हम बहुत बड़ी उन्नति कर सकते हैं, धन भी कमा सकते हैं, मान बढ़ाई, यश कीर्ति, ऐसा नाम भी कमा सकते हैं, धन कमा सकते हैं, बहुत मकान बना सकते हैं, पुत्र परिवार आदि की वृद्धि कर सकते हैं। धन के सदुपयोग से सांसारिक चीज होती है, ये तो बात है ही, पर मानव जीवन का समय इतना कीमती है, अगर ये खर्च किया था तो भगवत प्राप्ति हो जाए। अनंत सृष्टि जिस परमात्मा से उत्पन्न होती है, पालित होती है, संग्रहित हो जाती है, उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा के ऊपर आपका अधिकार हो जाए, अधिकार मानता नहीं, करता नहीं, मनुष्य भक्त नहीं करता, परंतु भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान कहते हैं जो भजन करते मेरे मुकुट मणि है, तो भगवान के मुकुट मणि बन सकते हैं। किसी से ये अपना जो समय है मानव जीवन का, इस समय को भगवान में लगाया जाए, तो समय इतने कीमती है, भगवान को खरीद सकते हैं, जो अनंत ब्रह्मांडों के नायक है, उत्पादक है, उसको हम खरीद सकते हैं, इतना बड़ा भारी कीमती धन है ये। वो धन जो पैसा है वो धन कमाया जाता है, परंतु ये धन तो आपको प्राप्त है, उस धन के कमाने में आप स्वतंत्र है, परंतु ये जितना समय मिला है उसमें स्वतंत्र है आप, परंतु इसमें एक विलक्षण बात है कि धन तो खर्च हो जाए तो फिर पैदा कर लेते हैं, परंतु समय खर्च होगा तो फिर पैदा होगा, समय पूर्ण होने पर उसी दिन जाना पड़ेगा उसी क्षण। अब राजा महाराजा हो, धनी सेठ हो, कितने बड़े क्यों हो, त्यागी संत महात्मा विरक्त भगवत भक्त कोई क्या हो, समय आने पर जाना पड़ता है, इसमें चलती नहीं किसी की। इतना कीमती समय वो भगवान में लगाना चाहिए, यह शरीर भी उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, इस तरफ ख्याल नहीं है। लोग दो चीजों में लगे, धन के कमाने में और भोगों के भोगने में, ये दोनों बड़ी खतरनाक चीज है। खतरनाक इसमें जो इच्छा है वो है, धन खतरनाक नहीं है, निर्वाह करना खतरनाक नहीं है, पर धन के संग्रह करने की इच्छा और भोगों के भोगने की इच्छा ये बहुत खतरनाक। इसमें एक मार्मिक बात है, धन है उसके लिए प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा, जिसका जितना प्रारब्ध है उतना धन मिलेगा, पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रारब्ध नहीं है, वो तो नया कर्म है, अभी नया इच्छा हो तो उसी प्राप्ति हो जाती है। इस वास्ते आया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए सजग हो जाऊं, उसके लिए मिला है। संतोष त्रिशु कर्तव्य, तीन चीजों में संतोष करो, स्वदारे भोजने धने, अपने स्त्री पुत्र परिवार मिला है उसमें, और जैसा भोजन मिल जाए उसमें, और जितना धन प्राप्त हो जाए उसमें, तीन चीजों में संतोष करना चाहिए। और त्रिशु नैवज कर्तव्य, तीनों में संतोष नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय जप दान हो, पाठ पूजन भगवान का किया जाए, भगवान नाम का जप किया जाए, दान पुण्य सेवा की जाए, दूसरों को सुख पहुंचाया जाए, इसमें संतोष नहीं करना। हमारे होता क्या है कि संतोष करते हैं जब ध्यान में, संध्या गायत्री कर लिया, पाठ पूजन कर लिया तो पुस्तक को समेट रख दिया, जब कर लिया तो माला को समेट रख दिया, कुछ भी काम नहीं हो तो निरर्थक बातें करने लगी, वो संतोष कर लेते हैं। पैसे कमाने के लिए दुकान पर बैठते हैं, रोजाना 5-7-10 रुपए पैदा होते हैं, और सुबह यदि 100 रुपए पैदा हो जाए तो दिन भर दुकान खुली रखते हैं, पाठ पूजन पूरा होने पर समाप्त कर देते हैं, रुपया 10 गुना पैदा हो जाए सुबह ही तो दिन भर दुकान खाली रखते हैं, उसके लिए तो हरदम करते संतोष करते नहीं है, और भजन ध्यान में संतोष करते हैं, ये आदत बहुत खराब है। एक तो समय भी सावधानी रखें और एक इस आदत को बदल दें, भजन ध्यान निरंतर हरदम करें। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की ये ही उत्तम रीत। गृहस्थाश्रम में वो संत है, हाथों से काम करे और जबान से भगवान का नाम लेता रहे, और हृदय में प्रीति भगवान से हो, हृदय में संबंध रखते हैं धन के भोगों के साथ, और भजन करते संसार का काम करते हैं तो, और धन कमाते हैं तो, काम करते हैं तो, जिससे में ध्यान होता है। एक शास्त्र में विधि आई है कि श्रवण मनन निधिध्यासन किया जाए तो तत्व की प्राप्ति होती है, तो जो सज्जन सत्संग करने वाले, जप ध्यान करने वाले, मंदिरों जाने वाले, श्रवण तो करते हैं शास्त्रों का और मनन करते हैं विषयों का और निधिध्यासन करते हैं धन का, और साक्षात्कार होता है दुख का, चौथी भूमिका होती है। धन कम है, हाय धन हाय धन हाय धन, वो धन हाय धन करने से नहीं मिला, हाय राम को राम जी मिल जाए, हे राम हाय राम करो, क्योंकि राम जी के मिलने का नया काम है ये, और धन के मिलने का प्रारब्ध एक पुराना काम है। पुराने प्रारब्ध से धन मिलता है, इसकी चिंता करते हैं रात दिन। जो नया काम करना चाहिए इस तरफ ध्यान ही नहीं है। बड़ी आश्चर्य की बात है और दुख की बात है। दुख लागे अरुवासी आवे, अजब जमाना आया है। दुख होता है मन में कि क्या दशा होगी, और समझदार आदमी होगा जिसमें लगे तो हंसी आती, क्या कर रहे हो, आपकी बुद्धि क्या काम कर रही है, धन के बटोरने में कर रहे हो, ये धन यही रह जाएगा, कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, और भगवान का भजन करो तो कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, सबका सब साथ हो जाएगा। साथ में चलने की पूंजी को तो कमाते नहीं है, और जिसको कमाते हैं वो साथ चलते नहीं है, दोनों तरफ से घाटा होगा। स्वयं विचार नहीं करते हैं, कहने पर चेतते नहीं है। सुन लिया आज तो एक तमाशा है, खेल एक ही तमाशा है, यही व्यसन की तरह अच्छा है, परंतु कोरा सुनने से नहीं, क्योंकि काम में लगो, सुनने से भी फायदा होता है, परंतु असली इस बात को मान करके काम में लाने से फायदा होता है। तो नया धन कमाना है साथ में लेने का, भगवत भजन करना है ना, वो साथ में चलेगा। धन कमाओ उसमें तो अपने भाइयों के स्त्री पुत्र आदि का हिस्सा होगा, भजन आप ले अकेला रहेगा। अभी कोई दुकान आप करो और साझे में सम्मिलित होकर आपस में करो, उसमें पांती आपकी होगी तो 8-8 करो तो रुपया कमाओ तो 8 आना आपको मिलेगा, और प्राइवेट दुकान है उसमें 4 आना कमाओ तो ही अपना होगा, 4 आना जितना कमाओ अपना होगा। तो चतुर आदमी होते हैं वो अपनी खास प्राइवेट दुकान को खूब चलाते हैं। शीर साझे की दुकान है उसमें भी काम करते हैं क्योंकि मिलेगा, परंतु प्राइवेट दुकान का पूरा धन अपने को मिलेगा। तो भजन ध्यान जब साध्याय सत्संग करना है, ये प्राइवेट आपकी दुकान है, और जो दुकान में धन कमा दो ये शिष्यवार है, माँ है, बाप है, भाई है, स्त्री है, पुत्र है, सबके हिस्से की आप करो, हिस्से आप में आ जाएगी, इतने ही आपको मिलेगा। और ये पूरी की पूरी आपको है, इसको इस धन को चोर नहीं ले जा सकते, इसको राज नहीं ले जा सकता, टैक्स बढ़ गया टैक्स लगाता है राज, पर भजन ध्यान करो परमात्मा का चिंतन करो तो इसमें टैक्स नहीं लगता है। आजकल तो शुद्धि है, अगर क्या हो जाएगा प्रथम हमारे से छूट है, अभी भजन ध्यान की गीता पढ़ने की छूट मिली हुई है। अभी का जमाना ऐसा है कि शायद अगर छूट मिले न मिले भरोसा नहीं है। तो अभी नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान को याद रखो, इस धन को चोर नहीं ले जा सकता, इस धन को राज नहीं कर सकता, इस धन का बंटवारा नहीं होगा, भाई भाई अलग हो गए ऐसा नहीं, इसकी पांती होगी, धन कमाया जाएगा, जमीन जायदाद मकान सबकी पांती होगी। तो ये धन खास आपका है, ये खास आपकी पूंजी है, और इस धन का भार बोझा नहीं होता। धन का भार होता है, नोट का भार होता ही भार होता है, पर मरते समय साथ में कुछ चलता ही नहीं, शरीर यही रह जाता है, धन यही रह जाता है। और ये भजन ध्यान किया हुआ अपना स्वभाव को शुद्ध बनाया हुआ साथ में चलता है या नहीं रहता है, और ये धन बढ़ता है। जैसे जैसे आप धन भजन करोगे वैसे भजन बढ़ेगा, सत्संग करोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, ये बढ़ता ही बढ़ता है, घटता नहीं है ये। इसका खर्च करो तो खर्च भी वो बढ़ता है, आप दूसरों को सुनाओ तो दूसरों को कीर्तन सुनाओ, पद सुनाओ, उससे धन खर्च नहीं होता है, बढ़ता है। ये कृते वर्धते नित्यम बढ़ता है खर्च करने से, औरों को भी धन में भजन में सत्संग कीर्तन में लगाओ तो आपको भी पुण्य होगा, उनको भी होगा। तो ये बढ़ने वाला धन है और नित्य रहने वाला धन है, साथ रहने वाला धन है, महान संगति करने वाला धन है। और ये धन कमाओ झूठ कपट से, जालसाजी, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी से, तो धन तो रहेगा यहाँ, और पाप किया वो चलेगा साथ। झूठ कपट किया है, धोखा दिया है, विश्वासघात किया है, वो पाप जमा होगा आपके भीतर, और यह कमाया धन रह जाएगा यहाँ, जिस धन के लिए पाप किया वो पाप आपके साथ में जाएगा, वो कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं। अब झूठ कबड़ के धन कमाते हैं, सोचते नहीं कि साथ में चलने की पूंजी को तो खराब कर रहे हैं, जहाँ पूंजी रहती है उसके लिए उद्योग कर रहे हैं। तो ये सावचेत होना चाहिए। ये जो सत्संग का समारोह है, ये असली अपने जीवन के साथ रहने वाली चीज है। इसमें बड़ी सावधानी से धन का संग्रह करो। ऐसी बात हरेक नहीं कहता है, धन की बात तो बाजार में, दुकानों में, घर में सब जगह मिल जाएगी, पर ऐसी बात तो जहाँ सत्संग होती है, कथा होती है, मंदिर में जहाँ, वहाँ ये बात मिलती है, ये बात बाजार में नहीं मिलती है। तो ये बात बड़ी दुर्लभ है। दुर्लभ साध सुलभ गरीबावा मनुष्य शरीर मिला है, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि दुर्लभ साध है, लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदम दुर्लभ दैवानुग्रह है। एकदम तीन चीज बड़ी दुर्लभ चाहिए, मनुष्यत्व, मोक्षत्व, महापुरुष। सत्संग मिलना बड़ा मुश्किल है। पहले तो परमात्म प्राप्ति की इच्छा ही बहुत कम है, पर वही नहीं, इस बात की इस तरफ ध्यान ही नहीं है। हम यहाँ देखते हैं तो मैंने निगाह किया, पाया कि मैं हमारे परिचित आदमी बैठे, यहाँ के आदमी कोई ज्यादा नहीं देखते। लेकिन ये समय किया, समारोह लगाया, अपने खर्चा किया, लोगों को खबर दी, आए हमारे साथ साथ ही, यहाँ ले जाओ चाहे वहां ले जाओ, कहीं ले जाओ, वही साथ वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले, कहाँ है, इसकी परवाही नहीं है। जो असली धन है उस तरफ तो ख्याल नहीं है, नकली है जो साथ नहीं चलेगा। जिसके लिए पाप आदि किया जाता है, भगवत भजन के लिए पाप नहीं किया जाता है, सत्संग के लिए अन्याय नहीं किया जाता है, इसके लिए अन्याय करते, पाप करते, अरे वो अन्याय सब साथ में चला गया आपका, अरे महान दुख देगा, महान कष्ट देगा, पड़ेगा काम दूतों से, धरेंगे मार दूतों से, दशा दुर्दशा होगी। उसके लिए तो रात दिन लगाते हैं, ठगाई करते हैं, ऐसे ही भगवान का भजन करो, न्याय करो, सज्जनो काम अन्याय का मत करो, ये ठीक नहीं है। जो भजन नहीं करता और पापों में लगाता है, सो परत्र दुख पाप ही सिर धुनी धुनी पछता है, पर लोग में दुख होना सिर्फ धुनी धुनी पछता, रोना पड़ेगा, रोने का फल रोना ही निकलेगा, वहाँ कुछ हाथ चलेगा नहीं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या, काल को दोष लेकर क्या करे, कलयुग आ गया, कर्म को हमारे भाग्य ऐसा ही, क्या करे, भजन नहीं होता, ईश्वर ने हमें ऐसा ही पैदा कर दिया, बिल्कुल मिथ्या दोष। कलयुग को दोष देना मिथ्या, क्या कलयुग का समय खराब नहीं है, बिल्कुल खराब है, पर तो भजन धारने के लिए बढ़िया है। कलेर दोष निधे राजन धस्ती एको महान गुण, महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम प्रजेत, भगवान के नाम का कीर्तन जप करने से कल्याण दिया। कर जुग सम जुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिना ही प्रयास, बिना प्रयास उद्धार हो जाए ऐसा मौका है कल जुग का। और कर्म भी अच्छा है, बड़े भाग्य मानुष अनुपावा, तो कर्म भी अच्छा है, खराब नहीं है। और कभी करुणा नरदे ही देत ईश मिन हेतु समय ही, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, उसमें अच्छे कुल में जन्म दिया, अच्छा मौका मिलने का जन्म दिया, ब्रज में मथुरा में जन्म दिया, भगवान ने कम कृपा कम नहीं की, तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, ऐसी कृपा करी उसका दुरुपयोग करते हैं, ये ठीक नहीं है। मनुष्य दुरुपयोग और सदुपयोग का ख्याल रखना चाहिए, जितनी उम्र मिली है उसका सदुपयोग कल्याण हो जाएगा, दुरुपयोग करो तो महान पतन हो जाएगा, नरकों में चले जाओगे। ये बात ख्याल करो, हर एक चीज का दुरुपयोग सदुपयोग होता है, समय का सदुपयोग दुरुपयोग होता है, धन का सदुपयोग दुरुपयोग होता है, उम्र का सदुपयोग दुरुपयोग होता है, विद्या का दुरुपयोग सदुपयोग होता है, बल का सदुपयोग दुरुपयोग होता है, विद्या का ऐश्वर्य का सदुपयोग दोनों होते हैं। वस्तु बड़ी नहीं, इसका उपयोग अच्छा किया जाए तो कल्याण हो जाए। रामायण में गुरु जी ने पूछा है कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, तो भूषण ने कहा कि सबसे दुर्लभ मनुष्य देही, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, जीव चराचर जाते थे, चराचर जीव सभी मनुष्य शरीर को मांग करते, ये चाहिए। वो मनुष्य शरीर की महिमा कहते हुए कहा है, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति छह बातें बताई। उसमें नरक शब्द आया है, नरक स्वर्ग अपवर्ग। तो ये महिमा में नरक शब्द आया, ये नरक महिमा है मनुष्य धर्म की। मनुष्य ऐसा बढ़िया जो नरक हो जाए इससे, ये महिमा हुई। स्वर्ग हो जाए, मुक्ति हो जाए, ज्ञान हो जाए, वैराग्य हो जाए, भगवान की श्रेष्ठ भक्ति मिल जाए, ये तो ठीक है। नर्क हो जाए क्या बता, तात्पर्य क्या निकला? मनुष्य जन्म है बहुत बड़ा, क्या ग्रुप योग करो तो नर्को में 84 लाख जोड़ी में जाओ। एक मनुष्य जन्म के किए हुए पाप 84 लाख जोड़ी और सब नर्कों से 28 बड़े बड़े कुंड और सैकड़ों उन कुंडों की यातना भुगतने पर भी एक मनुष्य जन्म किए हुए पाप नष्ट नहीं होते हैं। पुण्य का फल नहीं भोगा जाता है पूरा, इतने पाप हो जाते हैं। 84 लाख भुगतते 20,000 जुग, चार जुग बीत जाते सदियों, 3,000 वापर खाली और पापों का अंत नहीं आता है। इतने पाप संग्रह होते हैं मनुष्य शरीर में और इसमें किया जाए तो कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, अपवर्ग मुक्ति हो जाए। ऐसा ये मनुष्य शरीर है, अनंत जन्मों के पापों का नाश हो जाए इस जन्म में भगवत भजन करने से। जो पूंजी मैंने बताई आज साथ में चलने की, वो अगर पूंजी ले तो निहाल हो जाओ। ऐसा बड़ा शुद्ध जन्म मिला है, अच्छे घर में जन्म मिला है, अच्छी संस्कृति में जन्म मिला है, गीता रामायण जैसे भागवत जैसे पुस्तकों से परिचय हो गया है, कितनी बढ़िया बात हुई है। अच्छा संग मिलता है भगवान की जन्मभूमि, उसमें जन्म हुआ है, कितना ऊंची बात। भगवान ने बहुत कृपा कर दी है, अब थोड़ा सा काम करो। एक कोई माई दिन में जल भरने को गई, तो जल दूर जगह से दूर था वहां से लाने के लिए गई। बच्चा था वो सो रहा था, नींद में था। माँ ने देखा कि चलो जल भर रहा है, जल भरने को चली गई, पीछा बच्चा जग गया, नींद बुझ माँ 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 कर देखी नहीं माँ। देखा तो उधर से जल लेकर आ रही है, सिर पर घड़ा है और घेर आ रही है। दोपहर का समय है, जमीन तप रही है। माँ को देखा तो चल पड़ा माँ की तरफ, बालक तो माँ ही है संसार में, माँ के समान कोई है ही नहीं। उधर चला तो पैर जलता है, तो माँ के बड़ा दुख हो रहा है, करूँ क्या। वो रोता है थोड़ा, तो पैर उठा जाए उठा हुए, अरे क्यों वही जुड़े, अब क्या करे, कहाँ जाए, क्यों करे दौड़े। माँ के पास माँ जल्दी जल्दी आई, पहुँच गया। अब वहाँ पर माँ को पहुँच देख, माँ को और कह दे तू हंस लगे, लेट गया, रोबे जोर से लेट गया। अब लेट जी तो जड़े बना जैसे अग्नि में शेके जोर से खींच जाए, अब रो गए अठिन जड़े। उधर माँ ने कहा रे तू थोड़ा हाथ ऊंचा कर दे, मेरे सिर पर घड़ा है, हाथ ऊंचा कर दे ले लो। तो पड़ गया खड़ा ही नहीं रहा। अब माँ को दुख हो रहा है, बच्चे को दुख होता है उससे माँ को दुख कम नहीं होता। माँ शिरा कठिन की नहीं, कठोर कर लेती है, माँ दुख नहीं सह जाता। अब करे क्या, वो थोड़ा ऊंचा भी नहीं करता, ऐसी दशा हो रही है। भगवान करे तो थोड़ा ऊंचा तो हे नाथ, इतना सा ज्यादा काम नहीं है। हे प्रभु आर्थों पर पुकारो तो माँ गोदी में ले चल आ जाओ, आओ बेटा आओ। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के पैदा किए और भगवान को प्यारे है। सर्वमुख हो जीव वही जब ही जन्म कोटि अग्नाश है तब ही क्यों सर्वमुख आए महाराज, हे नाथ हे मेरे प्रभु पुकारो निहाल हो जाओ। पर भगवान को नहीं पुकारते, हाय धन हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, भीतर से पैसे ही पैसे की लगी है। नहीं जानते कि पैसे की लालसा से लोभ से क्या होता है। त्रिविधम नरक स्वेदम दारुण नाशम आत्मना काम क्रोधस्ता लोभा, ये लोभ नरकों में ले जाने वाला है। नरक तो ये पैसा तो लोभ न करो तो भी मिलेगा, मिलने वाला मिलेगा। लोभ करना क्योंकि इनका पूर्व संबंध है, और पाप करत निशिवास जाही नहीं कटिपट नहीं पेट आधाई। अगर साफ पाप करो तो रात्रि दिन पाप करो तो भी नहीं कटिपट, लज्जा निवारने के लिए पूरा कपड़ा नहीं मिलता, पेट भरने के लिए पूरा अन्न नहीं मिलता, ये दशा होती है। पाप रात दिन करते, बहम पड़ा हुआ है सज्जनों की कृपा करो। आप इस पर विचार करो, आपके संग में नया आवे शंका हो तो शंका करो, पूछो। ये सब जितना जो विषय पदार्थ है, भोग है, और जितने पदार्थ वे पैसे है, ये पूर्व कर्मों के अनुसार है, अभी उद्योग के अनुसार नहीं है। एक ही बाजार में व्यापार करने वाले आप देखते हो, एक घाटा हो जाता है, एक ब्रह्म हो जाता है। अरे घाटा हो जाए, बुद्धिमान कम थोड़ा ही है, वो भी सोच समझ करता है, परंतु मन में सजती है कि इसकी बिक्री है, अभी कर दो, फिर मंदा हो जाएगा। और एक ने खरीद लिया कि तेज हो जाएगा, और तेज हो जाए भटक हो जाए, फिर होते है कि हमने बेच दिया, अभी रहता ठीक रहता, कभी कभी ले लिया मुनाफा हो जाता है, तो वो अभी के उद्योग के अधीन नहीं है। ध्यान दो, एक प्रारब्ध एक पुरुषार्थ दो चीज है। बड़ी शंका होती है, अब थोड़े समय में क्या समझा, साधक समझने में नहीं गए। 18वें अध्याय के 12वें श्लोक पर कर्मों का विवेचन हुआ है, उसको आप देखो समझो उनको। तो धन कमाने के लिए जाओ तो धन है वो पूर्व कर्मों के अनुसार मिलता है, भाग्य के अनुसार मिलता है, और भगवान का भजन भजन के अनुसार मिलता है। अभी कर सकते, अभी भजन करने के लिए ही मानव शरीर मिला है, यही तनु कर फल विषय न भाई। तो चार चीज इच्छा होती है, एक तो धन की कमाने की, एक भजन ध्यान करने की, एक भोग भोगने की, और एक मुक्ति की। चार अर्थ धर्म काम मोक्ष चार पुरुषार्थ है। तो धन और काम दो में प्रारब्ध की मुख्यता है, और धर्म के अनुष्ठान में भजन करने में पुरुषार्थ की मुख्यता है। अभी नया काम है, ये पुराने सारे वो आप करो तो और न करो तो मिलेगा, वो तो मिलेगा ही। भाग्यम फल सर्वत्र न से पौरुष, दूसरा नहीं चलता है, बुद्धिमान चलती नहीं है। बड़ी भारी यातना है, तेल उबलते हुए तेल में डाल दिया जाए प्राणी को, थोड़ा सा अंगार लग जाए, तेल का छींटा ले जाए, गर्म कैसी दशा होती है, ऐसे तेल खराब डाल देते हैं नरकों में, उसमें सीजता रहता है। नार की जीव की यही बात है, कितना ही दुख दिया जाए वो मरेगा नहीं, जब तक पाप कर्म न भोग ले तब तक मरेगा नहीं, टुकड़ा टुकड़ा कर दो तो सीएम मिलकर पीछा हो जाएगा, जीता हो जाएगा, उसमें मूर्छित हो जाता है, बाहर डाल देते हवा लगती है, आराम मिलता है, तो विषयों से होने वाला सुख तो वह भी मिल जाता है, स्वर्ग में भी मिल जाता है, नरक में मिल जाता है, और दुख भी नरक मिलता है स्वर्ग में मिल जाता है। सुखम ऐन्द्रियकम राजन स्वर्गे नरके युवा, प्राणी नाम का देखा दुखम, जैसे दुख मिलता है वैसे सुख मिलता है, परंतु भगवत भजन करने से जो शांति मिलती है वो नहीं मिलती, न स्वर्ग में मिलती न नरक में मिलती है। मनुष्य जन्म में ही है एक मौका, और जगह मौका नहीं है, ये कोई शहर था, कहानी आती है ऐसी, चार दीवार चारों तरफ दीवार थी, एक दरवाजा था, एक सूरदास बाहर जाना चाहता है, वो क्या करे, दीवार के हाथ रखा और लाठी से चलते लगा, वो पूरे शहर के चक्कर लगाया। अब कहीं खाड़ा आता है, कहीं पत्थर आता है, कहीं झाड़ आता है, कहीं टूटता है, कहीं रुक पाता है, चलते 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 दरवाजा आया, ऐसे चलते दरवाजा के साथ लगा, ऐसे चलता रहा, खुद ही चल गया, दूसरा चक्कर वो चक्कर, अब फिर वो चक्कर, पूरा चक्कर काटर हुआ खुद ही चले। ऐसे ये मोक्ष द्वारा बताया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मुक्ति का दरवाजा है मनुष्य जन्म, और जो दरवाजा नहीं दीवार है सब, और जो बाहर निकलने की जगह नहीं है, ये दरवाजा है। अब इसे भोग भोगेंगे, धन कमाएंगे, ये सिर में खाज चलती है, छोकरे का जे क्यों रे खाज चले क्या, मार पड़ेगी तो खुद ही करते करते मिल गया, धन कमाए भोग भोगा इतना काम खत्म हो गया। एक राजा थे, तो उन राजा के पढ़ते समय दो मित्र मिले, मित्रता होगी आपस में, सपाटी थे, एक क्लास में पढ़ते थे, मित्रता हो गई, मित्रता हो गई तो वे कहने लगे कि भाई आज मित्रता करते हो पर राजगद्दी मिले तो मित्रता निभाओ तो हम समझे, तो कहते देख लेना भगत पर, अभी क्या कहे, ये तो समय बताएगा, अच्छी बात है, तो महाराज फिर ग्रस्त हो गए अपने। और वो राज उस राजकुमार उसको राजे से भी साथ राजगद्दी मिल गई, वो राज्य करने लगा। तो उन दो बंदे को देख के सदो मित्र थे, कैसा ये वचन निभाता है। तो उस राजा ने देखा दो चार वर्ष हो गया, राज्य जम गया, मित्रों को बुलाए और वही अपने जो खेल में आप राजा हो, हम तो साधारण ग्रस्त है, ये तो बचपन की बातें हैं, कोई बात उनको तो संकोच कह सेंगे राजाओं को हमारा राज दे दू। नहीं नहीं मैंने कहा था ना राज मिलेगा जब करेंगे तो तुम्हारे को 3 घंटा के लिए राज देंगे। अच्छी बात, अमुक देर आपको राज दिया जाएगा, एक भाई को कह दिया तुम आना वहां पर तुम्हारा राज देंगे। वो भी अपने संसदगढ़ चला गया, राज दिया गया और नौबत बजा दी गई कि अब 3 घंटा इनके हुक्म चलेगा, जो कुछ करना हो तो कर लो, राज दिया जाएगा। वो साथ राज मिला, राजगद्दी पर बैठा तो बोला देखो भाई राज में चीज किसी के राज आपकी, धन किसका का आपका, जमीन जायदाद ये सब आपकी, प्रजा आपकी, अब आपकी आपकी मर्जी आप जैसे करो, आपको स्वतंत्रता है सर्वथा ही, तो सब राज की चीज हमारी है कहा। तो हम तो महल में जाएंगे, रानी भी हमारी हो गई, तो राज हमारा हो गया तो ही हमारा हो गया। राजा ने कहा अब क्या करें, मैं तो वचनबद्ध हो गए, ये क्या बात कहता है। तो मंत्री ने कहा हाँ महाराज ठीक, आप सच्ची बात है, आपने कह दिया लड़ाई है, राजी दिया साहब, क्या है तो ला साहब ठीक है स्वीकार कर लिया। कहते महाराज राजगद्दी में जाओ तो राजाओं की बात है अच्छी तरह से सच धरकर जाना चाहिए। तो साहब नहीं वो कह दे राजा मत करना, वो हजार तुम्हें राजा मत कर दी, धीरे 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 जबत करता है। जल्दी राजाओं की जबत है, ये मामूली जबत नहीं है, राजाओं की जिस ढंग से होती है उसी ढंग से जमत होगी। घंटा डेढ़ घंटा उसमें लगा दिया, फिर ऐसा थोड़ा तेल लगाएंगे, फिर ऐसा करेंगे फूले लगाएंगे, अतर लगाएंगे, स्नान कराएंगे, गर्म जल दिया जाएगा, सुगंध डाली जाएगी, उसमें स्नान कराया जाएगा, तो स्नान कराया, स्नान करने के बाद सब कपड़ा धारण करो। 3 घंटे बीते, अब 3 घंटा, अब शाबाश 3 घंटा तो घड़ी देख लो साहब, आपका राज्य समाप्त हो गया, अब आप पठारो यहाँ से। 3 घंटा चले गए। कुछ दिनों के बाद दूसरे मित्र को बुलाया, भाई अपने साथ खेलते थे ना, याद है बचपन की बात है, क्या कहा आप बड़े हो, हम तो साधारण गृहस्थ हैं, क्या हैं? नहीं नहीं मैंने कहा था ना कि राज हो तो देख रहा, 3 घंटा के लिए तुम्हारे को राज देते हैं, 3 घंटा राज देंगे उसके बाद हमारा 3 घंटा राजगद्दी बैठाया। तो उसने कहा साहब मेरे को 2 दिन पहले मिल जाए, पीछे मैं राजगद्दी लूंगा। हाँ 2 दिन बाद आप सबकी मर्जी हो तो बोलो ठीक है। तो उसने पहले ही खबर करी कि राज्य में क्या क्या कमी है, प्रजा के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या दुख है, कहाँ जल नहीं है, कहाँ खेती नहीं है, कहाँ धर्मशाला नहीं है, कहाँ मल्लशाला नहीं है, किस किस चीज की कमी है, पाठशाला कहाँ पर नहीं है, स्कूल नहीं है, भी अपने 2-4 आदमियों का नोट करो, सब नोट करवा दे। फिर कहा साहब हमारे को राज्य मिल जाए तो राजगद्दी हो गई, 9 बजे बोल दी गई, अब इसका राज्य है साहब, तो मेरा क्या क्या अधिकार है। कैसा देखो राजा ने कहा मेरी व्यक्तिगत संपत्ति व्यक्तिगत है वो तो मेरा, क्यों अपने अपने व्यक्तिगत अपना होता है, जो सामान्य प्रजा है वो सब राजा का, सब धन खजाना बजाना पल फौज पलटन सब व्यक्तिगत, आदमी तो अपना अपनी चीज होती है वो व्यक्तिगत किसी और की नहीं होती, तो मेरी व्यक्तिगत चीज है और सब राजा का ठीक है। यानी भूख तो भोगी था ना पहले, साधन से कह दिया वो आए तो आदमी को बुलाओ बुलाओ आदमी को, लिस्ट ले का मुझे वहाँ खेती नहीं है आदमियों को करने के लिए, उनको जमीन मिल जाए, अब मुझे कुआ बन जाए, अब मुझे तालाब बन जाए, अब मुझे ऐसी धर्मशाला बन जाए, वहाँ बहुत तकलीफ पाते है, वहाँ मल्लशाला वो भी मिल जाए, यहाँ प्रजा के लिए खेल कूद बालकों के लिए स्कूल हो जाए या पाठशाला हो जाए। महाराज ऐसे कहते कहते 2-2.5 घंटा हो गया और ये हो जाए सर, अब लगाओ उनको सबको, सब हुक्म दे दिया, राजा का हुक्म कैसे चले, सब राज्य में व्यवस्था ठीक पहले ख्याल कर रखा था, भी कहा किन किन बातों की जरूरत है, सब अध्ययन किया हुआ था, सब कर दिया। 3 घंटे पूरे हुए, उसे पहले सब कर दिया काम, सब हमारा राज्य पूरा होता है। राजा ने कहा साहब आपको हम तो मंत्री बनाएंगे, हमारी इतनी सूझ ही नहीं हुई, राजा होने पर भी ये पता ही नहीं कहाँ प्रजा के क्या है, आपको मंत्री बनना पड़ेगा, हमारे लेना पड़ेगा यहाँ, तो वो तो आपकी आज्ञा है, हमारा राज्य तो पूरा हो गया, क्या नहीं उसको मंत्री बना दिया। अब मंत्री के हाथ में राजा की अपेक्षा, मंत्री के हाथ में काम तो सब मंत्री के हाथ में होता है, सब हो गया। इसी तरह से परमात्मा ने हम लोगों को 3 दिन का राज्य दिया है, एक तो बालकपन, एक जवानी, एक वृद्धावस्था, और कई तो बालकपने में चला कोई जवानी में, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन ही रहोगा और क्या रहोगा बताओ। बालक होता तो हम जवान होंगे, जवान होगा तो हम बुढ़े होंगे, बच्चे कहते हैं हम जवान होंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, फिर बूढ़ा आएगा ऐसा करेंगे, फिर तो मरेंगे क्या, और क्या लगभग 3 दिन बीतने बाद तो राजगद्दी उतर जाएगी, चल जाएगी। अब उन भोगों में तैयारी करियो, तैयारी सफाई कुछ नहीं मिला, हम भोग भोगेंगे, आराम करेंगे, खूब लेंगे, अब आराम ले लो, समय बीत चला जा रहा है, कब आराम भोगोगे, होश में आओ जरा, ये हजामत हो रही है सबकी, सब खत्म हो जाएगा काम, कुछ मिलेगा नहीं। और इसी उम्र में अगर भजन ध्यान करो, पुण्य करो, उपकार करो, सेवा करो, तो मौका मिला है बड़ा सुंदर। आज आप स्वतंत्र हो, अपने धन के अनुसार आप दान पुण्य कर सकते हो, दान पुण्य अधिक करे उसको अधिक पुण्य होता है, थोड़ा करे थोड़ा, ये कायदा नहीं है। शत्रुसार उदत्त बाटी है नापो कहे तो नरा, निपट नकारो न दीजिए उनको देह करा, शक्ति अनुसार आप दान करो पुण्य होगा। ऐसे नहीं भी धनवान को पुण्य, धनवान पुण्य कम करते हैं, निर्धन बहुत ज्यादा पुण्य करते हैं, कि ज्यादा कौन सा दबा है ही नहीं उनके पास। आप ज्यादा कम पूंजी को देखे वहाँ भगवान ने दरिद्रता नहीं है, तो ज्यादा धन देने से राजी हो जाएंगे, थोड़े धन से नाराज हो जाएंगे, वो ऐसे दरिद्री नहीं है। तो एक शहर के पास में एक बढ़िया रहता था अपने गांव में, तो वो गांव से अपना खोसा ले जाकर उस शहर में बिक्री करता, 8-10 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया रोजाना कमा लेता, सत्य का जमाना था पहले जमाने, तो वो सदैव जाया करता, तो वो सदैव अपने गांव से वो लेकर के वो उसमें थोड़ा धूप भी थोड़ा जल भी साथ में वो सब गया। आलू की और चेड़ो की चीजें बहुत बनती, कई तरह की आलू की चीजें बनती है आप जानते ही हो, और ऐसे चिन्हों की कई चीज है, सूखा चिन्ह, चिनागर, जोर गर्म, इन तरह के बनते हैं। अब वे सब बनवा करके खून से लेकर के वो जाता था। एक बूढ़ा आदमी रहने वाला शहर में, वो जाता बेचारा जंगल में लकड़ियां लेकर के आता, उसकी बिक्री करके अपने कुटुंब का पालन करता था। तो वो खूंसे वाला चल रहा था, उससे आगाड़ी वो बूढ़ा आदमी बोझा लिए हुए सिर पर लकड़िया वो चलता था, घाम तप रही थी, सुबह से कुछ खाया हुआ था नहीं, और वृद्धावस्था, बोझा ऊपर लिया हुआ, पसीना आ रहा है, आगे वृक्ष देखा तो मैं वृक्ष तक पहुंच जा तो आराम करूंगा, उस ठहर जाऊंगा। ऐसा वहां वृक्ष को गया, बोझा रखने लगा, इतना गिर पड़ा, बहुत थक गया था, गिर पड़ा, तुम घूम जाओ दौड़ा जल पड़ जाएगी, तो घूम जाने के लिए जल था उनके पास, उसी मुख में जल डाला, ठंडा ठंडा जल डाला, कुमोरा था पास, जल दिया, जल दिया, आग खोले, ये बोलो भैया बड़ी प्यास बहुत लगी हुई थी, फिर मेरी शक्ति क्षीण हो रही थी, भूख भी थी प्यास भी थी, आराम मिल गया, तुमने जल पिला दिया, बड़ी कृपा करी, कुछ खाओगे, अब नमकीन भी, फुलका भी, तरह तरह की आलू की चीजें खिलाई, खाना था उसने, और क्या हो गया, बोलो भूख, अब बोलो क्या करो, श्याम सेवा, अब तो भैया ये बोझा सिर पर लगे मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं है। वो खूंसे वाला सत्संग में जाया करता था, संतों के पास, दिन में तो ये काम था, रात में सत्संग हो जाता, तो उसने कहा मैं भजन ध्यान करता हूँ, शांति नहीं मिल रही है। उस दिन महाराज वो किया, उसके बाद अपने पास लौट कर घर गया, बैठा भजन ध्यान में मन लग गया, तब मेरे मस्त हो गया। फिर पहुंचे सत्संग में, आज तो महाराज मन अच्छा लगा। रात्रि के बाद दूसरे दिन सुबह जल्दी सत्संग के समय पहुंचा, जब तो उनके उपकार में दान पुण्य किए, मेरे पास दान पुण्य क्या था, अठाना चढ़ाना ऐसा दे दे, कभी रुपया दो रूपया दे देते, और कहां से तो दान के नाम है, दान पुण्य किए ही, मैं कोई दान पुण्य नहीं किया। अब दान किया ही नहीं उसने, दान का भाव ही नहीं था, वो बेचारा घूषित हो गया, उसके ऊपर दया आ गई, दान थोड़े ही उसने मारा, मैं दान कर रहा हूँ, मैंने दान तो कुछ नहीं किया। तो भाई कुछ न कुछ उपकार किया है, किसी दुखी जीव की सेवा की है तो शांति मिली है, नहीं तो शांति नहीं मिल सकती। बोलो तो कहा मैं, ओ महाराज एक बात है, एक ऐसे लकड़हारा था वो गिर पड़ा था, तो उसमें पानी पिला दिया, खाने को दे दिया, इतना तो कल हुआ मेरा दान को निकाल गया था, दया आ गई कि देखो क्या करे, तो उसको थोड़ा जल पिला दिया, थोड़ा सड़ा खाने को दे दिया, फिर वो अपने आप चला गया, कोई मेरे जान नहीं पहचान नहीं कुछ नहीं, उसी का उपकार किया हुआ है ना। ये मारवाड़ी कहावत है कि छलबल की खेती बेड़ा पर गोदान, खेती तो जल्दी की जाए वो है सौर, और एक समय आता है मौके पर दान दिया जाए वो बड़ा काम करता है, पात्र को मिली हुई चीज है वो बहुत काम करती है। तो इतनी आवश्यकता उसके थी, प्यास लगी हुई, भूख लगी हुई थी, थका हुआ वृद्धावस्था बेचारा निर्बल आदमी, तो वो इतना पुण्य होगा भजन में मन लगे एकदम। तो आप भजन में मन लगाना चाहते हैं, सेवा करना चाहते नहीं, उसमें हाय पैसा पैसा खर्च हो गया, पैसा खर्च हो जाएगा, ये पैसा कंजूसी करके इकट्ठा करते हो और दशा क्या होगी इतना ख्याल नहीं करते हो। सेवा करो, जहाँ मिल जाए मौका वहाँ सेवा करो, ऐसा जो मौका मिलता है, समय चूक पुण्य का पश्चाताप, एक वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक जब एक क्या हो तो समय पर उपकार करने का बड़ा भारी पुण्य होता है। वो ज्यादा पुण्य धनवान इतना पुण्य नहीं कर सकता, गरीब कर सकता है, गरीब कर सकता, धनवान भी कर सकता है, चाहे करना तो हरे के लिए, मना थोड़ी है धनी के लिए, मना नहीं है, परंतु थोड़े से पुण्य से बात मिल जाए वो धनी से नहीं होगा। एक जगह अकाल पड़ा हुआ है ऐसे मान लो, और वहाँ प्रचार प्रचार के लिए गायों के लिए काम करना है, तो सब अपना देने लगे, एक ने कहा मेरे पास तो 4 रुपए है नहीं अधिक, तो 2 रुपए मैंने 2 रुपया दे दिया उसने, 2 रुपया दे दिया, तो 4 रुपया वाला 2 रुपया देना है इतना कठिन नहीं पड़ता, और 100 रुपया हो तो कितना दे, 50 एक दो दे सकते हो, 2 रुपया दे सकते हैं, 50 नहीं दे सकते, 100 हो तो, और 1000 हो तो 5000 दे सकते हैं, 1,00,000 रुपया तो 50 लाख दे, 50 लाख दे दो, 50,000 दे दो तो भी 2 रुपयों का समान नहीं होगा। कैसे कि 2 रुपया दे देने से तंगी आती है खर्च में, आप 50,000 दो तो खर्च में तंगी नहीं आएगी आपके, खूब खुला खर्च हो बहुत से 50,000 आपके बड़ा बड़ा है, तो उनके बरोबर दान करने पर भी आप दान बरोबर नहीं होगा। इस वजह से ये मन में रहेगा हम तो गरीब है क्या करें, अरे गरीब हो उतना नहीं रूपात नहीं है, आपकी शक्ति कितनी होती है, एक जगह विचार हो गया कि सबसे बल ज्यादा किस में होता है, कोई कहे भैंसा में, कोई कहते सूअर में, नहीं नहीं हाथी में होता है बल, उसके नहीं हाथी में बल नहीं कुछ नहीं होता है, बल किस में, बल कीड़ी में होता है, कीड़ी में बल होता है, कैसी बात करते, चींटी है छोटी सी उसमें क्या बल है, हाथी में बल होता है। कहा कीड़ी एक जौ के दाने को पकड़ खेच ली जाती है, जिस वजन में जो में 3-4 कीड़ी बढ़ जाए, एक हाथी पर 4 हाथी रखो उठा लेगा, दब जाएगा मर जाएगा। तो चींटी अपने चौकड़ा धान करते तो कीटी में बल है जितना हाथी में बल नहीं आए, ऊपर दिखता है हाथी में बल दिखता है, ऐसे धनवानों में दिखता है बड़ा भारी, कुछ नहीं करेंगे तो अखबारों में देंगे, खर्च करेंगे, लोगों में ऐसा करेंगे क्या होगा, कई वासना रहती है, अदानी में धन हो गया तो हमने छोड़ा, अच्छा प्याज जाएगा तो दे जाएगा, ज्यादा नाम हो जाएगा, कई वासना लेकर करते हैं। वो पान कोई वो तो खरीदते हैं, दान करते तो खरीदते हैं, व्यापार करते खरीदते हैं, कई उपकार करते खरीदते हैं, अपने ब्राह्मण को दो, उनके ब्राह्मण को दो, उनके काम होगा तो उनके वे सेठ भी हमारे ब्राह्मण को देंगे, वासना रख कर देते। नगरहार ने क्या देते, उस घूमते वाला दिया की आशा रखी, ये भी हमारे को देंगे, कुछ करेंगे, क्या लेकिन करेंगे। तो ऐसे मौके पर दान पुण्य किया जाए उसका पुण्य होता है। आप कंजूसी होती तो नहीं होता, अच्छे पुरुष को आप दोगे तो अच्छे पुरुष कब मिलेंगे, कि सबको दो तो बड़े बड़े महात्मा मिल जाएंगे। आप टाल टाल कर दोगे तो संत को देंगे, इसको देंगे, उसमें ज्यादा पुण्य होता है। अच्छे महात्मा जी इनको भोजन करना बड़ा पुण्य होगा, उनके पुण्य ज्यादा नहीं होता है, कि अच्छे महात्मा है। अरे अच्छे महात्मा तो जगह जगह पुण्य देते, हरेक से भोजन कराते हैं, आप तो क्या अधिक हो गया, कोई भूखे थे वो, हरेक से मिलता है, गरीब है कोई नहीं देता, तिरस्कार करते हैं उनको, तो पर भूखा मरता हो, संग्रह है ये नहीं उसका जितना। आप व्यापारी हो, सस्ती चीज मिलती है, महंगी बिकती है तो उससे नफा होता है, महंगी चीज में नफा कितना होगा, वो महंगी कितनी होगी, अड़ी तो संत महात्मा तो होती है महंगी चीज, अरे घरे हमारे जी में हमारे जी में उसमें मतलब नफा ज्यादा नहीं होता, वो सस्ती चीज होती है उसमें बड़ा मुनाफा होता है, क्योंकि सस्ती मिलती है और महंगी बिकती है, उसका दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है। परंतु ये कब मिले कि सबको दो तो कोई ऐसा दे जाता है, और किसी किसी ऐसे दिखा करके देखो, संतों को भी दे तो हमारी रोटी खाओ, हमारा कमल ये पैर है, बांध देते हैं, देते नहीं है, खरीदते हैं, बाबा जी को भी खरीदते हैं, देते तो नहीं है, दे तो खुला दे दो, मर्जी आओ किसी को दो, आपकी दी हुई ऋण लिखो, कोई संत जला दे आग लगा दे तो नहीं, दूसरे को दे दे तो भी दुखी हो जाते हैं, दूसरे को तो दुखी हो जाते, आप हो तो महाराज तो आपको खरीदा तुमने, दान दिया नहीं है महाराज, दान दिया तो नहीं, मर्जी है जिसको दे न दे, चीज दे दे तो दुखी हो जाते हैं लोग, ऐसे मैंने देखा है। एक जगह एक बात है, हमारे साधु 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 के ही थे, तो गांव में एक भाव भक्ति वाले एक साधु को जाकर दूध दिया, भंगने आ गई, वो दूध सब भंगन को दे दिया, बड़ा मैं तो संतों को नहीं दिया, ये तो भंगन को दे दिया, अरे भाई तुम संत को खरीदते हो, दूध दे दिया तो खरीद लो, तुम ही खाओ तुम ही पियो, तो दूध देते हो खरीदते हो, कब्जा करते हो ऊपर, चाहते हो दान पुण्य हो जाएगा, कैसे पुण्य हो जाएगा, मर्जी आती आप आनंद होना चाहिए, महाराज की मर्जी हुई, कहीं की प्रसन्नता होगी, बहुत आनंद, हमारा दूध तो सफल हो गया, ये हिम्मत नहीं होती हमारी कीमत, आप देते हैं बढ़िया चीज तो उसका दाम ही मानते हैं, बड़ी ऊंची दर्जे की चीज है, ऊंची दर्जे की चीज आप देखते हो कि संत महात्माओं को अलग है, राजी हो जाएंगे, लोलुप है वो, राजी संत नहीं है, वो तो भाव गाड़ी जनार्दन है, भगवान भाव होता है, तो संत बाल खाने से राजी हो जाएंगे। एक संत की बात सुनी है मैंने, एक संत थे बड़े प्रसिद्ध, तो गाड़ी में जा रहे थे, तो वहां पर गाड़ी आने वाले के महाराज आते हैं, महात्मा जी आते हैं, तो एक माई पहुंची, पहले पहुंची गाड़ी से, सामने गई, महाराज जी महाराज आज भिक्षा हमारे यहाँ करो, अच्छा माई भिक्षा कर लेंगे कोई बात नहीं, कल जा रहा है गाड़ी बड़े शेर सब गाड़े, महाराज हमारे भिक्षा चलो इस माई के करेंगे, पहले कर दिया महाराज हमारे वहाँ पधारो, बहुत आग्रह किया कि भाई हम कह चुके अब माई बात नहीं है, उस माई के वन माई पहले आ गई, उस माता जी के वहाँ भोजन करते हम तो महाराज हमारे वहाँ बड़ा अच्छा रहेगा, संत कह हमारे अच्छा रहे, पहले कह दिया, उन्होंने देखा भाई ये माई माई को जाकर के माई आज तू छुट्टी दे दे महाराज को, कहते महाराज जाओ भोजन करो, तो तू कह रहे हम दे देंगे, देख तेरी कुटिया बना देंगे, पक्का मकान बना देंगे, महाराज को तू छुट्टी दे दे हमारे यहाँ भोजन करे, वो चिड़ गई कि तुम खरीदते हो संतों की भिक्षा, वो खरीदना चाहते हो, अभी माने तुम्हारे धन का नहीं देंगे हम, हमारे तू क्या खिलाएगी कि ग्वार फली को तो साग और रोटी बाद अरे हमारे बहुत अच्छा भोजन बने, तुम संत को पहचानते ही नहीं, अच्छे भोजन बने, ये धन का अभिमान और भोजन का अभिमान है तुम्हारे, तुम्हारे नहीं देंगे, बाबा जी का हम तो भाई पहले कह चुके हम तो वहां करे महाराज वहां ऐसे सब्जी रोटी हमेशा जो कुछ मिले मैया ने पहले कह दिया हम तो माता जी यहाँ भोजन करेंगे। तो ये धन का अभिमान होता महाराज, ये संतों को जो धन से खरीदना चाहते हैं, हमारे पास धन है इतना इतना है, धन से संत नहीं खरीदे जाते, भगवान नहीं मिलते। शेरी जयदेव जी की बात सुने, एक धनी आदमी बीमार था तो लोग ये वहां पहुंचे तो उसे बात करी तो वो धनी बोला कि महाराज पैसे से सब मिलता है, पैसा नहीं तो कुछ टका धर्म टका कर्म टका ही परमम पदम जैसे भी है टका नाश्ती हा टका टक टकाए थे, पैसा होता है सब होता है, अच्छी अच्छी चीज मिलती सब मिलती है। तो शेर जी ने कहा जयदास जी ने कि सब मिलते हैं महात्मा नहीं मिलते, महात्मा महाराज सैकड़ों आ जाए भोजन करने के लिए, मैं बुलाऊ आ जाए सभी महाराज धन होता सब आते हैं। करे देखो महात्मा होते तो धन से नहीं खरीदे जाते, धन से खरीदे जाते वो महात्मा नहीं होते। आपके अभिमान है धन से खरीदे जाएंगे, धन से वे खरीदे जाए जो धन से कीमत कम है उनकी, वे धन से खरीदे जाएंगे, मन धन की ऊंची थी तो धन से नहीं खरीदे जाते। कोई चीज खरीदते हो तो आपके पास जितना धन है उसे सस्ती चीज मिलेगी, इसके 100 रुपये मिलते हैं लगते हैं तो दुकानदार के 100 लगे है क्या, उसके कम लगे वो दबा लेगा। तो धन से बल से जिस पर अधिकार करते हो धन से कमजोर चीज मिलेगी, ऊंची चीज तो कृपा से मिलेगी, आपकी भक्ति से मिलेगी। बालक रो करके माँ पर अधिकार कर लेता है, क्या बल से अधिकार कर ले माँ पर, माँ फेंक दे तो सर क्या करे वो, और रोता है तो माँ सीधी उतर जाती है। यशोदा मैया गए वहां ठाकुर जी ने क्या किया, वो बिलोना फोड़ दिया, दूध पिला रही थी प्यार कर रही थी इसमें दूध उफन लग गया, दूध लो नीचे रख दिया और दूध में गई गुनगा कि मेरे से दूध प्यारा तेरा पत्थर दिया फोड़ दिया, फोड़ा कर लगा मैया मारेगी अब तो मैया मारेगी क्या करे, तो से भागे मक्खन का कटोरी पर वो ले लिया हांडी हाथ में भागे, वो बिखर गया दो ही बना सके आंगन में पीछे चले गए, बैठा था ऊंखल काठ का जो उल्टा किया हुआ और उस पर बैठ गए, अब बंदर बजाने लगे खावे कितना छोटी सी बाली कितना मक्खन खावे, बजाने लगे तो माँ ने देखा तो महाराज बर्तन फुरा हुआ सब माँ को आई रीस कैसा बंदर है, मेरे सासू दादी सासू के हाथ का ये सादा जिसमें बिलोड़ा करे खूब घी पिया हुआ, अब नया घर तो कितना घी पी जाएगा, इन बहनों को माता है ये है नी बर्तन बहुत प्यारे होते हैं, बर्तन रोटी दे देगी कीमती। एक मास्टर थे पीपार की बात है, मेला में गया तो कहते हैं कि हमारे को भोजन जैनों की पढ़ा रहे थे तो ऐसा बढ़िया भोजन देते हैं, एक वो सिल्वर जो नकली लोहा सा है ना क्या ग्रहण वाली उसकी एक कटोरी, उसे बड़ा धना गया कटोरी हमारी कहाँ गई कटोरी कहाँ गई कटोरी कहाँ गई, तो वे मास्टर बोले मेरे से कि भोजन कितना कीमती था, वो 5-7 रुपयों का कीमत बढ़िया बढ़िया भोजन दिया, उसकी कोई परवाह नहीं, एक दो पैसों की कटोरी के लिए हल्ला मचा दिया, उनको बर्तन बहुत प्यारे होता है तो बर्तन फोड़ दिया कन्हैया ने, ये बड़ी बड़ी बात है। अब वो गए माँ गई पीछे, अब माँ वो बच्चा कहाँ गया क्या पता है, तो बिलोना में फोड़ दिया ना वो दे ही हो गया नाराज, कन्हैया से नाराज हो गया क्यों कन्हैया के लिए तो था मक्खन हो जो नाराज हो गया, तो बस उसने क्या किया कि इधर गया है बता दिया, पैर मन गए नहीं दही के तो दही ने क्या इधर गया इधर चोर उसी चली गई जा देखो तो बैठा मकर देता है बद्र को मकर दे रहा है दे दादी पीछे अब नाला भागे गाड़ी भागे अब मैया पीछे, भैया का शरीर भारी था कौशल्या मैया का शरीर तो ऐसा भारी नहीं था, यशोदा माँ का शरीर भारी था तो भागे अब छोकरे खुद भी जाएंगे उधर माँ अपनी दुकान तक दौड़े तो दौड़े पीछे लाठी लिए कन्हैया दौड़े अगाड़ी, कन्हैया ने देखा कि अपने चलो चौपाल में जहाँ नंदारी बड़े बैठे है ना ये वहाँ माँ नहीं आवेगी ठीक जाएगा वहाँ पड़े, उस दिन कोई छुट्टी थी तो वे सब काम पर गए हुए वो भी सुनी जगह थी, बाबा भी पहुंच गई अब क्या करें अब फायदे पाल गई। अरे लला अब फूल बिखर गए, केश खुल गए, सोनरी की नशक गई, क्या करे, फिर पसीना आ गया। छोकरा मानता है नहीं, सौगंध रह गए शत्रु के, पत्तों की सौगंध है, त्रेता की, द्वापर की सौगी, कल्लू की सौगंध जो है, रोने लगे, खड़े रह गए। अब पकड़ा पकड़ दोनों हाथ पड़े एक हाथ में, क्यों देते हैं ऐसा काम करता है, रोने लगे जोर जोर से। अब रोने लगे तो मार हाथ लाठी कर, ये रोने से माँ के ऊपर कर लिया कब्जा, माँ मार नहीं सकी, तो रोकर माँ पर कब्जा कर सकता है, बल से कर सकता है बालक माँ पर कब्जा। राक्षसों को मारने में उनको कोई संकोच नहीं, वह माँ के आगे तो कुछ नहीं कर सकते, भगत के वश में होते आए भगवान, तो बल तो ये बल है भाई, तो भगवान में बल है, अपार बल है, तो बल से नहीं, ऐसे ही भगवान को आप बल के द्वारा, तप के द्वारा, जप के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा, तीर्थ व्रतान आदि द्वारा भगवान को वश में नहीं कर सकते। रोने लग जाओ भगवान के लिए तो भगवान सीधे हो जाए, सत हो जाए, ऐसे तो भगवान की प्राप्ति करना है, वो केवल आर्थ भाव भीतर में उसी जलन हो जाए, हे नाथ हे नाथ, तो भगवान आ जाए। परंतु आपके तो संसार के पदार्थ भोग रुपये ये कीमती हो गए ना, भगवान को कौन जाने, रुपये नहीं हो तो मना हमारा काम अटक जाएगा, अटकता नहीं, रुपये तो बहुत आवश्यक है, राम जी क्या आवश्यक है, रोटी गाल दी पानी पी लिया सो गए, नींद आई क्या सोच, भगवान की क्या दूर कोई आवश्यक, गर्मी है तो खोल दे पंखा चले आराम से, ऐसे आराम तलब को भगवान नहीं मिलते। भगवान की जिसकी एक लगन होती है वो ऐसे आराम में भूलता नहीं, हो उसके लगन भगवान में लगी रही है, या सुख भोग संसार की तिथि मान आदर सत्कार आदि उसको वश में नहीं कर सकते, जिसके हृदय में लगन लगी है भगवान की, लगन लगी घनश्याम की, वो लगी है स्वास्थ्य के सज्जनों का दुख सुना में बात बहुत है, मैं तो कहता हूँ आ जाती है आज काम में लाओ, भगवान का भजन करो, नाम का जप करो, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष, कलियुग में नाम की महिमा विशेष है, कलियुग केवल नाम आधारा नहीं, कली कर्म भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु, रामायण का पाठ करो, राम नाम का जप करो, कीर्तन करो, कलयुग में हमारा कलो केशव कीर्तन भगवान के नाम कीर्तन कर ध्यान हो जाए, ऐसे करो हमारा जन्म सफल हो जाए, सब ठीक हो जाए, हमारे हो गया साढ़े नौ कोई हाँ
के सन्मुख कैसे हुआ जाए, क्या साधन है
संसार से विमुख होने पर, संसार से विमुख होने पर राम में सन्मुख हो जाओ, संसार के सम्मुख रहने राम में विमुख रहो। कबीर मनवा एक है भावे जहाँ लगाए, भावे हरि की भक्त भाव विषय कमाए, संसार के सम्मुख भगवान कैसे होंगे, संसार के विमुख जो भगवान सन्मुख हो जाएंगे, और सन्मुख भगवान तो सब जगह है ही, आगे विषयों का अटक दिया आप यहाँ अटक गए, आगे दृष्टि जाती नहीं, आप भगवान के सन्मुख हरदम रहते हैं, पर आप विषयों के सन्मुख होते तो भगवान की आग लग जाती है, हो जाते हैं।
कहते हैं विवेक जो है टिकता नहीं है,
विवेक टिकता नहीं है, आप टिकाते नहीं, विवेक कहता है मैं टिकूंगा नहीं,
जानते हुए भी हम विवेक का आदर,
जानते हुए आदर नहीं करता विवेक का, आदर करो तो विवेक जाएगा ही नहीं, विवेक तो नित्य है आपके पास है, पर वो विवेक लग गया भोगों में, ये भोग बढ़िया है, ये धन बढ़िया है, ये व्यापार बढ़िया है, ये विवेक तो है क्या, विवेक बिना जान लोगे भाव लगा लोगे, विवेक बिना रुपया कमा लोगे, भोग भोग लोगे बिना विवेक के, विवेक लगा अपने पास से लगा दिया छोड़ में लगा दिया तो भगवान में कहाँ लगे, ये बात है। भगवान को पहचान सकते हैं, देखो संसार से उपराम होने पर, भगवान की लगन होने पर आप अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं पहचान सकते, संसार से विमुख हो रहे हो तो आपको पहचान लेंगे नहीं, आपको पहचान लेंगे भगवान, आपको पहचान लेंगे, आपको पहचानते हैं, आप किधर लगे हो, आपका ध्यान क्या है, ध्यान क्या है, भगवान जानते हैं। तो भगवान की तरफ आप लग जाओ, संसार से ऊपर आप हो करके भोगों के रूपियों के वशीभूत मत हो। भोग है रुपये रहे पर ये वशीभूत हो जाते हैं, भगवान से विमुख हो जाते। फिर भगवान कैसे पहचाना, वो चीजों को पहचाना, भाव के पहचाने गए, इस भाव में वहाँ मिलता है, इस भाव में यहाँ पड़ता है, ये पड़ता पड़ेगी इतना ही। विवेक तो बहुत है आपका। सरकार कानून बनाती है, उसे तेज आपके पास बुद्धि है, जो किसी न किसी ढंग से कर उसी पर निकल जाते हैं। तो बुद्धि कम नहीं है आप में, मन लगा दी है व्यापार में, सरकारी कानून में फंसते नहीं आप, वो नए नए कानून बनाते, आप नई नई सूच निकाल देते हैं। तो वेद तो है आपके पास, ये तो नई सूच कैसे निकाल देते हैं, भगवान की तरफ लगाने के लिए नहीं है, क्यों भगत नहीं होते।